यज्ञ का मैं दूसरा भाग सुनाती हूँ हिस्ट्री का। तो पहले भाग में तो शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ रचा, ब्रह्मा बाबा को रचा और मुख वंशावली ब्राह्मण रचे और उन ब्राह्मण बच्चों के आगे बाबा तो सैंपल हो गया, त्याग तपस्या सेवा करके सभी बच्चों को आप समान बनाया। और शिव पिता आ गए तो बच्चों को दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान जो मिला, उससे बहुत सारी माताएं बहने भाई सेकंड में निश्चय बुद्धि हो गए, टाइम ही नहीं लगा, और पवित्रता के धारणा को भी सेकंड में अपना लिया। क्या होगा हमारे साथ में, हमारे लौकिक संबंधी क्या करेंगे, क्या हमारी हालत होंगी, किसी ने कुछ नहीं सोचा। जो बाबा ने कहा वो उन्होंने माना, स्वर्ग आने वाला है निश्चय हो गया, हमको स्वर्ग में चलना है दृढ़ संकल्प ले लिया। अब हमको चलना है तो जो हमारी धारणाएं है पवित्र बनो, बस वो पाठ प्रैक्टिकल में पक्का हो गया। इसलिए ईश्वरी विश्वविद्यालय के सामने साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक प्रकार की परीक्षा आ गई, मनुष्यों की तरफ से, हमारे लौकिक संबंधों की तरफ से। परंतु एक साल में ही अपनी शांति के बल से, योग बल से, ज्ञान और पवित्रता के बल से उन सभी हंगामों से पार हो गए। एक साल लगा। फिर 1938 में हम सभी कराची में आ गए। क्यों कराची में आ गए? क्योंकि हैदराबाद सिंध में उन लोगों ने बहुत घमसान किया और सुनने नहीं देते थे, जाते थे तो रास्ता बंद कर लेते थे, अनेक प्रकार के उन्होंने विघ्न डाले। तो बाबा के कराची में बहुत सिक्की लदी अच्छे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने कहा बाबा इन्हों को कदर तो है नहीं और ये लोग ऐसे हमको तंग करते हैं इन्हों को, तो बाबा हम आपको निमंत्रण देते हैं, हम मकान का प्रबंध करते हैं, आप सभी बच्चों को ला करके यहाँ पर ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ाओ और हम सब की ये इच्छा है। तो उन्हों के निमंत्रण पर बाबा हम बच्चों को कराची में ले गए। तो 36 में ये स्थापना हुई है और 38 में हम कराची में आ गए हैं। तो कराची में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के पहले जन्म का सारा रास बताया। बाबा के ऊपर नाम ब्रह्मा जो पड़ा वो हैदराबाद में नहीं, कराची में, और स्पष्ट बताया ये प्रजा पिता ब्रह्मा है, सारे जगत का पिता है और जगत के कल्याण के लिए ये निमित्त है। इनके जितने भी जन्म हो चुके हैं उनको ये भी नहीं जानते और बच्चे भी नहीं जानते, अब उनके सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, मैं सभी बच्चों को भी और ब्रह्मा को भी उनके सब जन्मों का रास बताता हूँ, कैसे ये चक्र में आती है आत्मा। तो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का जो चक्र है वो चक्र का चित्र भी कराची में शुरू हुआ और ब्रह्मा नाम भी कराची में शुरू हुआ और बाकायदी हम आत्मा समर्पण जो हुई जिसको हम यज्ञ कहें, यज्ञ में बच्चे स्वाहा हुए वो हम कराची में हुए। हैदराबाद में स्वाहा होने की बात नहीं थी, बहुत ही हंगामा करते थे, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के लिए बाबा ने हॉस्टल बनाई थी तो उन बच्चों को वहां रखा था, परंतु परिवार के परिवार सरेंडर होकर के रहे वो हमारा कराची में रहना शुरू हुआ। तो चार बंगले थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग बंगला और कन्याओं के लिए, हमारे जैसी कन्याएं बहुत थी उनके लिए अलग बंगला, हम मम्मा के साथ में रहते थे। एक बंगला था जिसमें बड़े बड़े बच्चे थे, उनकी पढ़ाई भी बड़ी बड़ी थी, उनको पढ़ाने वाली टीचर्स, उनको संभालने वाली माताएं उनों के साथ अलग बंगले में रहती थी। और चौथा बंगला था जहां बाबा खुद रहता था और बाबा के साथ में कुछ भाई और बाबा का छोटा सा परिवार बाबा के साथ भी था, वो था कराची क्लिफ्टन पर। क्लिफ्टन माना समुद्र का किनारा, तो समुद्र के किनारे पर अच्छे अच्छे बंगले बने हुए थे, तो बाबा का बंगला भी बहुत अच्छा था। और ऐसे बाबा बहुत रॉयल्टी से बाबा वहां रहते थे, तो बाबा हर हफ्ते में दो बार या तीन बार हमारे पास जहां हम कन्या माता रहती थी उसका नाम था कुंज भवन, वो बाबा वहां पर अपने बंगले से हमारे पास कार में चल करके आते थे। हफ्ते में मैं समझती दो बार या तीन बार बाबा के क्लास कराते थे, मोली चलाते थे। और कुछ दिन ऐसे भी था कि बाबा वहां मोली चलाता है जिसको हम कहते बाबा भवन, जहां बाबा खुद रहते, जसोदा मैया रही, बृजना दादी रही, तो उस बंगले का नाम रखा बाबा भवन। और एक नाम बंगले का नाम था कुंज भवन, वो था मम्मा का, जहां मम्मा भी रहती थी, हम सब बच्चियां भी रहती थी, मेरे जैसी सब बच्चियां। और बाकायदे हमारी जो दादियां हैं, चंद्रमणि दादी हैं, प्रकाशमणि दादी हैं, शांतामणि दादी है दूसरी, वो सब हम कुंज भवन में थे मम्मा के साथ। जैसे ये मुख्य सेना ये थी, बाकी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, भाई है, इस प्रकार से। इस प्रकार से बाबा एक स्थान पर मुरली चलाते थे, तो फिर हमारे में से कुछ बहनें साइकिल पर चढ़ करके बाबा की मुरली सुने जाते थे। कई बार हमारे को बसेस थी तो एक बस भर करके जाते थे, जैसे आज भी जा रहे हैं ना, आज ज्ञानेश्वर में जा रहे हैं, आज ज्ञानेश्वर वाले इधर आते हैं, ऐसे फिर वहां हम बाबा के भवन में मुरली सुने जाते थे। फिर जो मुरली सुनते थे वो आकर के फिर हम अपने कुंज भवन के भाई बहनों को सुनाते थे, तो हमको रिपीट करने का अभ्यास मिल गया। बाबा की मुरली को कैसे सुनी, कैसे उनके नोट्स ले, और फिर कैसे आके सुनावे मम्मा के आगे, तो फिर इस प्रकार से हमारा अभ्यास भी बढ़ता रहा और सभी भाई बहनों को बाबा की मुरली सारे दिन में सुनने को मिल जाती थी। कई बार बाबा डायरेक्ट भी आ जाते थे, तो बड़े बड़े दिनों में बाबा डायरेक्ट आते थे कुंज भवन में, जहां बड़ा हाल था, रहने के लिए काफी सारे कमरे थे, बाग बगीचा था, बहुत अच्छा बड़ा पक्का बंगला था। तो इस प्रकार से अभी समझो यज्ञ में सरेंडर हो गए। और कुछ ऐसे परिवार थे जिनको फैमिली फैमिली को अलग अलग बंगला मिला हुआ था, तो फैमिली फैमिली अलग अलग बंगले में रहने लगी और खाना एक स्थान पर पकता था और सभी को हिस्सा हिस्सा अपना लेकर के अपने अपने बंगले में ले जाते थे खिलाने के लिए। तो अब हमारी दिनचर्या क्या रहे, सारा दिन हम क्या करें? तो कल परसों मेरे से किसी ने पूछा, दादी फिर कराची में जो बाबा कहते भट्टी में मेरे बच्चे पके और रात दिन योग तपस्या करते थे, तो क्या आपकी दिनचर्या सारा दिन रहती थी? वो मैं आपको दिनचर्या सुनाती हूँ। तब हम जब कराची में थे ना, तो मॉर्निंग में उठना और कुछ समय हम मेडिटेशन में बैठते थे, फिर स्नान पानी करके मुरली का क्लास सुनते थे, चाहे मम्मा मुरली चलावे चाहे बाबा की मुरली वहां से आवे वो सुने, मतलब जैसे नियम है उस अनुसार मुरली सुनते थे। फिर हम नाश्ता पानी करते थे, फिर नाश्ता पानी करके ना हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी मिली हुई थी, किसी को सिलाई करने की, क्योंकि इतने जो 300-350 भाई बहने थे तो उनके कपड़े भी सिलाई होंगे, तो सिलाई की ड्यूटी, किसी को रोटी पकाने की भंडारे की ड्यूटी, और किसी को पहरे की ड्यूटी, कोई आता है जाता है तो गेट के आगे दिन में तीन बारी पहरा होता है तो उसको चेंज करते थे। और कई बार ऐसे घर की जितनी भी सफाइयां थी तो माइयों को नहीं रखा था, बाबा ने कहा नौकर नहीं, भिकारी विकारी ब्राह्मण बच्चों के बीच में नहीं आने चाहिए, तो कोई को भी हम अंदर नहीं रखते थे। बड़े बड़े पतीले होते थे बर्तन, वो हम साफ करते थे मिलजुल करके, आठ का ग्रुप छह का ग्रुप बर्तन साफ करते थे। अपने अपने बर्तन तो सभी साफ करते थे और साथ साथ बगीचे की सेवा करते थे। अनाज डिपार्टमेंट वाले अनाज को भी साफ करते हैं। सब्जी काटने के लिए तो मम्मा भी बैठती थी तो बाबा भी बैठता था, क्योंकि सब्जी तो सभी खाते हैं, अनाज भी सभी खाते हैं, तो अनाज में हम सब बैठ जाएंगे और सब्जी काटनी होगी तो सभी बैठ जाएंगे। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट थी जिससे वो अपना अपना काम करते थे। इस प्रकार से दिन भर में ये हमारा काम चलता था। शाम के समय हम मेडिटेशन में बैठते थे और अमृत वेले कई बार, जब से ये पाकिस्तान बना ना तो बाबा ने साफ कहा, बच्चे देखो ये पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में किसी समय भी आपकी परीक्षा आ सकती है, लोग मारने के ख्याल से भी आ सकते हैं और बुरे ख्याल से भी आ सकती हैं, इसलिए तुम बच्चों को योग का दीपक हर वक्त जला करके रखना, योग का पहरा तुम्हारा अंदर होना चाहिए। तो बाबा भले दूसरे बंगले में थे परंतु मम्मा के बंगले में हमारा योग का पहरा मजबूत रहता था। तो कई बार तो हम ये तीन साल पाकिस्तान वाले 2 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे से योग लगा रहे हैं, कोई रात्रि को 12 से लेकर के 5 बजे तक, कोई 2 से लेकर के 5 बजे तक, कोई 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, ऐसी सारी रात हमारी जागृत अवस्था थी, लाल लाइट जैसे जलती रहती थी और हमारा ऐसा योग का पहरा था। हम स्वयं के भी रक्षक, अपने यज्ञ के भी रक्षक। यज्ञ में 2-3 बहनें, उनके हाथ में डंडा और सीटी होती थी, वो चारों ओर चक्कर लगाती थी एकांत में बंगले के अंदर ही अंदर, चारों ओर अपने बंगले के बाउंड्री के अंदर ही हम पहरा लगाते थे और फिर हम अंदर योग का दूसरा पहरा लगता था। इसलिए 3 साल हमने देखा कि कोई भी ऐसा दुश्मन हमारे सामने नहीं आया, कोई भूल से भी किसी का वाइब्रेशन आवे वो आने चाहता था, उनके हाथ में कोई हथियार पवार था नहीं, बिल्कुल पीसफुल हमारी अवस्था थी। परंतु बाबा वार वार कहता था, बच्चे देहाभिमान में रहेंगे तो माया वार करेगी, इसलिए ये तुम्हारा पढ़ाई का समय है, पढ़ाई में मस्त रहो। तो सचमुच हम आपको बताते हैं, हमको अपनी इज्जत तो प्यारी रहती है कि ऐसा न हो कि कोई मुसलमान आके हमको पकड़े, इज्जत हमारी चली जाए, इसलिए हम इतना योग में रहते थे जैसे मीठी चिंता लगी रहती थी कि हमको इसमें अलर्ट रहना है, योग युक्त रहना है। और सुबह को भी सवेरे सवेरे सैर करते रहते थे, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि 4:45 बजे योग पूरा होता है तो सब फरिश्ते ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, कोई बाहर सैर पर चले जाती है, कोई अंदर सैर करते रहती है, कोई बाबा के रूम में, कोई मेडिटेशन हॉल में, कोई शांति सत्तम में, सब जगह योग का युवाई मंडल होता है सुबह को, ऐसे वहां भी ऐसा था। इसलिए दिन में फिर बाबा ने कहा कि 2-3 घंटा सेवा करो यज्ञ की, अपना यज्ञ अपनी सेवा, वस्त्र सिलाई करना ये भी अपनी सेवा, बगीचा था उसको पानी देना, बगीचे की पालना करना ये भी अपनी सेवा है, कपड़ा धुलाई करना ये भी अपनी सेवा, बर्तन साफ करना वो भी अपनी सेवा, सारा यज्ञ हमारा और हम यज्ञ के निमित्त बच्चे सब यज्ञ का काम करते थे। फिर भी दिन में बाबा कहते हैं 50-50 बच्चे, एक अखंड योग का रूम बनाया जिसमें 50 बच्चे या 25 बच्चे टर्न बाय टर्न एक एक घंटा बैठे, तो मनसा सेवा भी करें, वचन से भी और ये योग की भी। इस प्रकार से तीनों प्रकार की सेवाएं हमारी साथ साथ चलती रहती थी। वायुमंडल इतना पावरफुल होता था कि कोई भी मुसलमान भाई ऑफिसर बड़े बड़े वो अंदर जांच पड़ताल के लिए आते थे, पूछते थे कि आपकी संस्था क्या करती है, आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आप पाकिस्तान हो गए हैं अभी आप हिंदुस्तान में नहीं जाने वाले हो, क्या आपको यहीं रहने का है, क्या आपके सगे वाले यहां आएंगे या आप सगे वालों के पास जाएंगे। तो उनको जो ज्ञान सुनाया जाता था उनसे उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बुआ आपके पास आने से न हमको शांति बहुत मिलती है, करंट आती है। तो ऐसा आप क्या अंदर सोचते हो, ये सब बहने जो बैठी है तपस्या कर रही है वो क्या करती है? फिर हम उनको ज्ञान सुनाते, फिर कहते हैं आपका खुदा क्या बोलता है पाकिस्तान के बारे में, आप ये बताओ आपका खुदा, आपने खुदा क्या बोलता है आपको पाकिस्तान के लिए? तो हम कहते थे खुदा कहते हैं कि पाकिस्तान बनाओ। बच्चों ने नाम बहुत अच्छा रखा है पाकिस्तान, पर पाक काम नहीं करते हैं। तो अगर मेरे बच्चे पाक काम नहीं करेंगे तो नाम तो ऊंचा रखा और काम अच्छा नहीं, काम नापाक, तो नापाक काम करने वाले का नाबूद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो खुदा का वार वार हमको आवाज आता है, हम तपस्या में बैठते हैं हमसे खुदा बातें करता है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप हमारे भाई हो, आप परमात्मा के बच्चे, खुदा के बच्चे हो, तो आप जीवन में कोई ऐसा काम न करो जिसको पाप कर्म कहा जाए, फिर खुदा बख्श नहीं करेगा। बस इस प्रकार की शिक्षा देते थे, खुदा को याद करो, खुदा के बच्चे हो, नेक काम करो, नेक काम करना हमारा धर्म है, शांति आपको भी चाहिए, प्रेम आपको भी चाहिए, तो हमको भी परमात्मा सच्चा प्रेम देता है और बेहद का प्यार सिखाता है। बच्चे ये सब तुम्हारे परिवार वाले हैं, अलग नहीं है, क्योंकि मैं सबका बाप एक हूं। तो ये जो ज्ञान देते थे ना उनको अच्छा लगता था। तो बाहर जाके कहती है ये खुदाई खिस्मतकार है, खुदा की खिस्मत में ये लगी हुई है, इसलिए इन लोगों को जो सेल्वेशन चाहिए हम देंगे, ये यहां रहे ताकि हमारा पाकिस्तान पाक हो रहे, हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम न हो। तो उस समय में वो हमारे से मदद मांगते थे कि आप अगर ऐसी सिक्कियां देते रहेंगे तो हमारा पाकिस्तान भी बच जाएगा। और बाबा बड़ी युक्ति से बताता था कि खुदा के बच्चे हो तो खुदा जो कहता है वो काम करो, इस प्रकार से उनको शिक्षा देते थे। और कई लोग कोर्स करने आते थे, उनको कोर्स भी कराते थे, पर हम बाहर जाके सेवा करें जैसे अभी हम सेवा करने जाते ना, ऐसे उस समय कराची में सेवा करने का हुक्म नहीं था। बच्चे तुम स्वयं के लिए तपस्या करो, बच्चे धारणा करो, संगठन में रहो, संगठन में एक दो के अवगुणों को नहीं देखो, हर एक के गुणों को देख करके उनके साथ व्यवहार अच्छा करो। अच्छा किसी ने भूल कर दी तो उसके भूल का वर्णन भी नहीं करो और उसके भूल को अपने चित्त पर भी नहीं रखो, फिर आप उनसे व्यवहार भी बुरा नहीं करो। तो आप लोगों को ये ध्यान में रहेगा कि जो करता है वो अपने लिए, हमको बाबा के मत पर चलना है, हमको श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत पर चलने के लिए इतना जोर आता था कि हम सदा श्रीमत पर ही चलते रहे, कोई भूल होती भी थी छोटी मोटी तो उसको फिर सारे दिन में ठीक कर देते थे। फिर मम्मा हमारे ऊपर थी, जो मम्मा हमारी पालना करती थी, मम्मा रोज रात्रि को कचहरी कराती थी, सब बच्चों को बिठा करके प्यार से प्रेम से हंसाते बहलाते, फिर सबसे पूछती थी आज आपका दिन कैसे बीता, सब खुशी मजे में रहे, कोई ने कोई भूल तो नहीं की? तो मम्मा फिर हंसाती थी, भूल तो नहीं की होंगी, मैं समझती हूँ की है क्या किसी ने भूल, पर जिसने भूल की होंगी वो तो भूल सामने आ जाएंगी, चेहरा बोलेगा। फिर मम्मा कहती कोई बात नहीं, भूल तो हो जाती है लेकिन भूल से अबुल बनना है, हाथ उठा जिसे भूल, ऐसा प्यार से पूछती थी, हम सीधा हाथ उठाते थे हमारे से भूल हो। मेरे जैसे 10-12-15 कोई ना कोई हाथ उठाते थे, और छोटे भी थे कोई इतनी एज तो बड़ी थी नहीं, तो हम मम्मा के प्यार में अपना सच्चा हाथ उठा देते थे। फिर मम्मा पूछती थी कौन सी भूल, फिर हम बताते थे, अगर हम नहीं उठाते हैं तो फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछती थी, जिसने किसी की भूल देखी हो या कोई ऐसी बात सुनी हो वो हाथ उठाए। तो हमको डर लगता था कि अगर मेरी बात किसी ने देखी होगी तो वो हाथ उठाएंगे, इसलिए हम ही हाथ उठाए अगर हम नहीं हाथ उठाएंगे तो दूसरा उठा लेगा। तो भूल में भूल, एक तो भूल की और दूसरा भूल को छिपाया, तो दो भूले हो गए। तो मम्मा क्या समझेंगी, बाबा क्या समझेंगा, इसलिए सच्ची दिल पर साहिब राशि सच सच बता दो। फिर मम्मा पूछती थी, पूछते पूछते हमारे हाथ हुआ, मम्मा शिक्षा दे रहे, ऊपर से आया बाबा। अब हमको बाबा के सामने अपनी भूल दिखाना खराब लगता था, अंदर रोना आता था, ये आज क्या हुआ, मैंने ऐसी भूल क्यों की, अभी बाबा के सामने मेरा चाट जाएगा। तो मम्मा तो माँ थी ना, तो प्यार में भूल कर भी देते थे, बोल भी देते थे। बाबा तो बाबा, बाबा की नजरों से हम गिर जाएंगे, बस ये बहुत आता था। तो जब बाबा आता था तो हम अंदर ही अंदर कहते थे, आज बाबा क्वेश्चन ये न पूछे, मम्मा किस बच्ची ने भूल की, मम्मा से पूछेंगे तो मम्मा तो धीरे धीरे बोलती, मम्मा बहुत युक्ति से चलती, मम्मा हम बच्चों का तर्क भी लेती और यकदम हाथ नहीं उठाएगी। तो बाबा आएंगे, मम्मा कोई बच्चे ने रोया तो नहीं आज, सभी बच्चे खुशी मजे में रहे ना, मम्मा कोई ने कोई भूल की, मम्मा तुम बताओ, तुम टीचर भी हो, तुम उनकी माँ भी हो, तुमको सबका पता लगता है, तो तुम बताओ। तो मम्मा हमको देखेगी, सबने मेरी भूल है, तो मम्मा मेरे को मीठा मीठा देखेगी। तो जब मम्मा मीठा मीठा देखेगी तो मेरे को अंदर आएगा, मम्मा मेरी बात बाबा को नहीं सुनाना, हम ऐसे ऐसे करेंगे, बस मानो आज हो गई तो हो गई, पर मम्मा ये मेरी बात बाबा को नहीं सुनाओ, यानी एक शर्म और कुछ नहीं, लजा आती थी। तो मम्मा मुस्कुराते मुस्कुराते, नहीं बाबा वैसे सभी अच्छे रहे, सब खुशी में रहे, ऐसे कोई कोई की थोड़ी थोड़ी भूल हुई है, थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे करके मम्मा देखेंगी, मैं बताऊं क्या, हमको देखेंगी, फिर हम मीठा मुस्कुराएंगे, फिर मम्मा हल्के रूप में बताएंगे, उसी बात को भारी करके नहीं बताएंगे कि हाँ इसने बहुत भूल की, आज इसने बहुत रोया, बाबा इसने डिसर्विस की, नहीं, मम्मा मुस्कुरा करके कहेंगी, बाबा ऐसे थोड़ी थोड़ी भूल की, पर सभी ने महसूस किया, हाथ भी उठाया और महसूस भी किया। अच्छा मम्मा वो कौन सी बच्चियां थी, कौन सी बच्चियां थी, फिर भी मम्मा दो मिनट शांत में रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। जब आवाज तीसरा वाली पूछेगा, मम्मा तुम बच्चों का छिपाती हो, हंस हंस के, मम्मा तुम्हारा बच्चों से बहुत प्यार है, तुम बच्चों की बातें बाबा को नहीं बताती हो, तो मम्मा वो भी मुस्कुराएगी, मम्मा बताओ तो सही, अच्छा बच्चियां तुम बताओ, फिर हम देखेंगे बाबा प्यार देता है तो हम हाथ उठाते, बाबा हम हमारे से भूल हो गई, कौन सी बच्ची तुमने भूल की, तुम्हारे जैसी अच्छी बच्ची तुमने भूल की, ऐसे शर्म आएगा, तुमने भूल की, बाबा ऐसे हो गई, अच्छा क्या हुई, फिर हम थोड़ी बात बता देंगे, अच्छा अच्छा मम्मा कोई बात नहीं, बच्चियां हैं संगठन में रहती हैं, थोड़ी थोड़ी भूलें भी कर लेती हैं, पर महसूस करती है तो फिर दोबारा नहीं करेंगी। ऐसे रोज बाबा आता था, कभी समाचार सुनाते थे कोई ऐसा, कभी किसी बच्चे की खुश खराफत, कभी कोई बच्चे ने भाषण किया बाबा के आगे तो महिमा करते थे, मम्मा कितना अच्छा भाषण बच्चे ने किया। मान लीजिए जैसे हमारे पास शीलू है, अभी तो शीलू बड़ी हो गई ना उम्र में, पर तभी छोटी थी मिसला, तो छोटी छोटी बच्चियां अगर बाबा के सामने भाषण करे, एक तरफ मम्मा की संदरी चौंकी, एक तरफ बाबा की, और दूसरी बीच में, ये तो अभी बीच में बड़ी है ना, तब बीच में छोटी पड़ती थी, एक तरफ बाबा एक तरफ मम्मा और बीच में छोटी चौंकी, तो उस चौंकी पर बाबा बुलाएगा, पहले गीत बजेगा, गीत बजेगा तो अचानक बाबा पूछेगा, बच्ची गीत सुना, तो हम कहेंगे हाँ, तो गीत तो उस समय में फिल्मी गीत थे, पर हम लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म के एक्टर तो हमारे बुद्धि में नहीं घूमते थे, हमारे बुद्धि में वही बाबा वही प्यार, और जैसे कि बस हमको ले चलो प्रभु उस दुनिया में ले चलो, हाँ जहाँ हमारा चित्त चैन पावे, मानो ज्ञान उस गीतों को हम लौकिक दृष्टि से नहीं सुनते थे, न दिल लगी के फिल्म देखी हम लोगों ने, न हमारी बुद्धि उनमें जाती थी, हमारे गीतों से हमको हमारा रस मिलता था, जैसे हम बाबा की याद में पाते। तो बाबा कहेगा, बच्ची तुम इस गीत का अर्थ कर सकती हो, तो हम कहते हैं कर तो सकती हूँ, पर अभी कहूंगी हाँ तो बाबा फौरन मेरे को बुलाएगा, तो हम ऐसे सुनते रहते हैं, बच्ची कर सकती हो, तो हम मीठा मुस्कुराती रहती है, अगर हाँ की तो बाबा बुलाएगा, तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने हाँ की तो आओ बच्ची आओ 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 आके सुनाओ, तो हम बैठ जाएंगे। तो हमको पता है कि बाबा भोलेनाथ है, बिठाएगा फिर बाबा खुद दीवार चलानी शुरू कर देगा, हमको भूल जाएगा। तो हम चुपचाप योग में बैठ जाते थे, हिलते भी नहीं थे। तो बाबा ही मुरली चालू कर दे और हमारे को छोड़ दे। और कई बार तो बाबा को ध्यान में रहता, तो मम्मा ये बच्ची को मैंने योग उसमें बिठाया है और बच्ची ने बोला तो कुछ नहीं, बच्ची बोलो बोलो। फिर जब हम बोलते थे ना तो बाबा इतना खुश होता, इतना खुश, मम्मा ये बच्ची तो इतनी अच्छी है, तुम भी ऐसा भाषण नहीं कर सकती हो। मम्मा मैं भी नहीं कर सकता हूँ ऐसी शिकल, बोला ना जैसे कि मम्मा मैं भी नहीं ऐसा भाषण कर सकता हूँ, ये बच्ची तो फटफटी है, ये तो पंजाब मेल है, ये तो देखो कैसे छू 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 करके मुरली चला दी, मानो इतनी एकदम से भाषण लहर से, मम्मा ये बच्चिया बहुत अच्छी है, ये तेरे से मेरे से आगे निकल जाएगी, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ये ज्ञान लकी सितारे, मम्मा ऐसी है ना, मम्मा तुम भी समझते ना मैं ऐसा भाषण नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मा भी भोले अमरनाथ के साथ भोली होके बैठ, नहीं बाबा। तो बच्ची को लिफ्ट मिल गई, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां रोज आएंगे, रोज बाबा पूछेगा बच्ची तुम भाषण करेंगे, और छोटी छोटी बच्चों को, कई बार छोटी छोटी बच्चियां ऐसी छोटी छोटी आती थी मिचनू मिचनू और बड़ी स्वीट, और बाबा को दृष्टि लेती रहती लेती रहती निरंतर, बाबा घूम घाम करके सबको देख करके फिर देखता है ये बच्ची, देखती रहती है बिल्कुल एकाग्र, कहेंगे मामा ये बच्ची है ना इनको योग मियां बिठा दो, बड़े बड़ों का योग ठीक नहीं इस बच्ची का योग ठीक है, इनको सामने टीचर बना के बिठा दो। तो वो छोटी बच्ची को बाबा टीचर बना के बिठा देते, बच्ची तू योग कराएंगी, वो कहती हाँ, आराम से बैठ करके योग कराती, इधर बाबा बैठा है इधर मामा बैठी है, पर उसमें दिया बमान है नहीं, वो अपना योग करा रही है और सामने वाले सब उनसे दृष्टि लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मामा ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, आज ये छोटे हैं कल ये संसार का कल्याण करेंगे, संसार का उद्धार करेंगे, और जो भाषण करने में अच्छी है ये तो बड़े बड़े विद्वानों को जीतेंगी, संन्यासियों के पास जाएंगी, और बड़े बड़े जो संत महान आत्माएं हैं जो बहुत बड़ा बड़ा भाषण करते हैं मामा, उनको ये जीतने वाली मेरी बच्ची है, ऐसे बाबा लिफ्ट देते थे। और फिर बाबा क्या करते थे, विचार सागर मंथन करने के लिए ना काम देते थे कि ऐसे लिख करके लिया, ऐसे लिखाते ना जैसे गुलाब के फूल के ऊपर, तो बाबा कहेगा आज गीता के भगवान के ऊपर तुम सब लेख लिख करके लाओ। बस जिस दिन बाबा ने काम दिया, हफ्ते में एक बार दो बार देते थे, तो सभी माताएं बुढ़ी बुढ़ी माताएं भी कॉपी पेन से लेके, कोई छत पर बैठी है कोई बगीचे में बैठी है, सबकी स्टूडेंट लाइन, कोई कहां कोई कहां एकांत में बैठ करके विचार सागर मंथन कर लिया कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है, गीता कृष्ण ने नहीं गाई है, कृष्ण द्वापर में नहीं आया है, गीता का ज्ञान संगम युग में बाबा ने दिया है। तो ऐसा ऐसा करके बाबा कहते सब लिख करके लाओ, फिर वो सबकी लिखत बाबा खुद पढ़ते थे, पढ़ करके रिमार्क्स लिख करके भेजते थे कि फलानी बच्ची ने बहुत अच्छा भाषण किया, बच्ची तुमने जो लेख लिखा है बहुत अच्छा, फिर बाबा मार्क्स देता था, और तुमको आज शाम को फलानी बस में, मामा को लिखा मामा इन इन बच्चों को फलानी बस में मेरे पास भेज देना, आज मेरे पास आके भोजन पान करेंगे। तो हमको तो बड़ी लिफ्ट मिल जाती, आज बाबा के पास जाएंगे भोजन पान करने तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, एकदम हमारा और तो कोई घर था ही नहीं, बाबा का घर और मामा का घर, मामा के घर में हम रह रहे हैं और बाबा के घर में जाते हैं अपना इम्तिहान देने के लिए। तो बस इतना तैयार होकर के अच्छे अच्छे कपड़े जो होंगे ना, सारा दिन यज्ञ की सेवा करते, अच्छा कपड़ा हम कहाँ पहने, बाबा के पास जाने के समय अच्छी ड्रेस पहनेंगे, साफ सुथरे होकर के स्नान पानी करके जाएंगे। जैसे आठ दस बहने चली गई, फिर बाबा चिटचैट करेंगे, फिर बाबा अपने साथ खूब अच्छा बढ़िया भोजन बना के हम बच्चों को खिलाएंगे। तो हमको बाबा गिफ्ट देता था, लिफ्ट देता था, उमंग उत्साह सदा बना रहे, और रोज काम देता था कि पहाड़ों पर जाओ और ये जो छतें खुली खुली है ना उसे छतों पर बैठो, एकांत में मनन चिंतन करो, एक एक विषय के ऊपर मनन चिंतन करो, तो मनन चिंतन करने का रोज काम देता था, हमारा अभ्यास हो गया। फिर बाबा कहते ग्रुप ग्रुप बना करके ना उसके ऊपर क्लास करो, हर रोज कोई टीचर, आज मैं टीचर, कल तुम, कल ये, ऐसे आठ में से टर्न बाय टर्न एक एक निमित्त बनेगा ग्रुप को चलाने के लिए। तो बिजी बाबा ने बहुत किया, फ्री नहीं रखा, नींद एक घंटा दिन में करते थे, चार तीन साढ़े तीन से अढ़ाई बजे से लेके चार बजे तक, फिर चार बजे चाय पानी पी के फिर अपनी सेवाओं में या योग में या सेवाओं में। तो विचार सागर मंथन करने का भी बाबा ने प्रैक्टिस कराई। और दूसरा यज्ञ की सिलाई वगैरह काम करता है वो भी बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा भी तुमको जरूर करनी, नहीं तो मार्क्स कट। कर्मणा सेवा में भी सुस्ती नहीं, आलस नहीं, आनाकानी नहीं, बहानेबाजी नहीं, सब एक्यूरेट। तो मम्मा चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी, सिलाई करती है तो भी मम्मा आएंगी चक्कर लगाएंगी, सब का मुखड़ा देखेंगी, सब ठीक ठाक बैठे हुए हैं, भंडारे में जाएंगी, भंडारे वाले सब अच्छी तरह से रोटी पका रहे हैं, बाबा की याद में है और रोटियां पक रही हैं। और अनाज साफ करने में देखेंगे भाई फलाना ग्रुप अनाज साफ करे, तो मम्मा देखेंगे कि फलाना ग्रुप एक्यूरेट अनाज साफ कर रहा है। मम्मा सब हमें हमको साथ देती है, बाबा आता बाबा भी रुचि से बैठेंगे, मामा बैठो बैठो मामा, आज बाबा भी अनाज साफ करेगा। फिर मम्मा और बाबा दोनों बैठते हैं, हम सब मिलकर अनाज साफ करें। फिर बाबा कहेंगे मामा आप भी प्रैक्टिस करो कि कर्म और योग दोनों साथ साथ चलता है, गेहूं भी साफ करो, पत्थर एक भी न पड़े, और योग भी तुम्हारा लगा रहे, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं जाती है जास्ती, थोड़ा और को पत्थर निकालना बस, सिलाई बुनाई में बुद्धि जाती है, नहीं तो टेरा बांका हो सकता है। अगर बुद्धि योग बाबा के साथ होगा तो हमारा कटिंग में नीचे ऊपर हो जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, परंतु अनाज साफ करने में नहीं, पापड़ बेलने में नहीं, रोटी बेलने में नहीं, रोटी पकाने में नहीं, फटाफट फटाफट बाबा की याद में रोटी भी पकाते रहती है और याद में भी रहती, चाट अच्छा रहता था, ऐसे रोज चार्ट पूछते थे कि योग का चार्ट कैसा रहा, योग रहा या नहीं रहा। एक एक दिन का मतलब फुल निगाह बाबा की हमारे मनसा सेवा पर, कर्मणा सेवा पर और वचन की सेवा पर। फिर बाबा लेख लिखने देते थे, हम निकले तो 14 साल के बाद है यहाँ, पर बाबा कराची में काम देता था, बच्ची आज लिख करके भेजो, अगर मैं संन्यास आश्रम में जाऊं तो संन्यासियों को, निवृत्ति मार्ग वालों को मैं ये ज्ञान कैसे सुनाऊंगी, लेकर के ले आओ। और हमको पता भी नहीं संन्यासी कैसे होती है क्या होता है, पर इतना तो है ना कईयों ने संन्यास किया हुआ तो गुरुओं को देखा हुआ था। फिर बाबा कहेंगे आज लिखो कि अगर राजकुमार के कॉलेज में जाऊं तो उन कॉलेज में उन स्टूडेंट्स को मैं कैसे समझाऊं, तो आप वो समझाओ और जिससे कि हमको लगे कि बच्चों को, बच्चों की माइंड विचार सागर मंथन हो रहा है, बच्चों की माइंड तैयार हो रही है खाली करो। तो इस प्रकार से विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा रोज हमको काम देते थे और रोज हमारा चार्ट देखते थे कि इन बच्चों का चार्ट कैसा है। चार्ट मना मॉर्निंग से लेके शाम तक सारा दिन हमारा कैसे व्यतीत हुआ, संगठन में रहे, पर संगठन में भाव स्वभाव, किसी का कोई अवगुण देखा, किसी का अवगुण हमारे चित्त पर रहा, तो हमारे चित्त का क्या चार्ट रहा, हमने चित्तवृत्ति की कितनी अच्छी सफाई की, कोई भी दाग न लगे, आई गई बात खत्म, आई बात और गई बात, फिनिश। फिर उनका चिंतन न चले, सोचो आप, देखो अपने आप को, कई बातें हमारे सामने आती हैं, अच्छी नहीं लगती है वो चिंतन में आ जाती है, उनके बारे में चिंतन चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए, उनकी सारी करेक्शन हमारे बुद्धि में आती रही है ना ऐसा। परंतु बाबा ने सबको, सबका मम्मा बाबा बैठे हैं, किसी को किसी के बारे में चिंतन करने की दरकार नहीं, तुम सब बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मम्मा बैठी हैं, तुम्हारी दादियां बैठी हैं और बाबा बैठा है। कभी ला को हाथ में नहीं उठाना है, ला को हाथ में नहीं उठाना है। क्यों? कि मम्मा बाबा जहां बैठी हैं, तो बच्चों का काम है अगर कोई गलत बात देखती है तो उसको छिपाना भी नहीं है, परंतु गलत बात हो तो मम्मा को रिपोर्ट कर दो, बोल न सको लिख करके दो। डरो नहीं कि वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, नहीं, तुम सब लिख करके दो। आज मैंने अपनी आंखों से इस व्यक्ति को ऐसा कर्म करते हुए देखा, तो रंग बात को छिपाना नहीं है, रंग बात दियो लेकिन तुम उसका सामना नहीं करो। हाँ, मैंने तुमको देखा, तुमने ऐसा किया, तुम तो हो ही ऐसे, देखना मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हम कभी ही किसी को नहीं कहते थे। कोई हमारी सखी होती थी तो हम उसके ध्यान में दे देते थे कि मैं आपके ध्यान में दे देती हूँ कि देखो हम बाबा के इतने ऊंचे बड़े यज्ञ में बैठे हैं। परंतु कोई हमारे से ईर्ष्या करता है तो हमको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या करने वाले कभी भी किसी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ईर्ष्या करने वाले सदा ही जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते, उनकी आग बुझती नहीं। इसलिए वो अगर करे तो हमको नहीं करना। इस प्रकार की धारणा मम्मा बैठ अच्छी तरह से पक्की कराती। मुझे याद आता है कि मैं इस यज्ञ में चली तो मैं ये अटेंशन रखती थी कि बाबा जो जो काम देता है ना वो हमको करना है। तो बाबा उस बंगले से डायरेक्शन देता था तो मैं कहती वो काम मैं सबसे पहले नंबर में करूं और सबसे पहले नंबर में बाबा के पास भेजू, ये मुझे शौक रहता था। तो बाबा ने लिखने का काम दिया, मैं अकेली एकांत में गई रात्रि को जा करके और फिर वो लिख करके ना बाबा के पास भेज दिया। तो दूसरे दिन बाबा ने मुरली में मेरा नाम लिया, थोड़ी मेरी महिमा की, थोड़ा मम्मा को रिपोर्ट की, मम्मा इस बच्ची ने बहुत अच्छा लेख लिखा और सबसे पहला नंबर भेजा। तो जो हमारे जैसी सखियां होती थी ना उनको अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा होने लगा कि हाँ ये सबसे पहले लिख करके भेजती है, किसी से राय नहीं करती, किसी से मिलती नहीं, किसी को बताती नहीं, छिप छिप करके भेज देती। तो वो मेरे बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती थी। मैं अंदर सोचती थी मैं तो एक अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ, मैं अपनी उन्नति करती हूँ, तो ये क्यों ऐसे करती हैं? तो मैं कभी मम्मा को बताती थी, मम्मा कहती कोई बात नहीं, तुम अपना अच्छा काम करती जाओ और जो तुम्हें श्रीमत मिली उसकी पालना करती जाओ। बोलने वाले बोलते रहेंगे, रोकने वाले तुमको रोकते भी रहेंगे, लेकिन श्रीमत क्या है, तुम श्रीमत पर चलती रहो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, सुनो ही नहीं, धारणा नहीं करो और उसके प्रति नफरत भी नहीं। प्रैक्टिस करती थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं अगर कोई ऐसा रंग काम करती तो मेरा काम है अपने को ठीक करना, अगर मैं ठीक काम करें तो फिर क्या है। इस प्रकार से मम्मा हर रोज धारणा के ऊपर रोना बाबा को अच्छा नहीं लगता था कि तो मेरे बच्चे, बेहद का बाप मिल गया बच्चों को, विश्व की बादशाही बाबा दे रहा है, बड़े थे बड़ा बाबा, और ये बच्चे रो रहे हैं। तो रोने के लिए बाबा बहुत कड़क रहता था, कहता है जिन्होंने रोया ना तिनने खोया, वो स्वर्ग की बादशाही नहीं पा सकेंगे। तो हमको फिर अंदर आता था कि एक छोटी सी भूल में स्वर्ग की बातें मेरी चली जाएंगी, तो हम अटेंशन रखते थे, अंदर रोना आता था पर गंभीरता भी आ जाती थी, आंखों से आंसू नहीं बहाने देते। इस प्रकार से बाबा ने हमारे रोने पर अटेंशन रखा, हमारे भोजन पर अटेंशन रखा। तो क्या होता था कि हम बड़े बड़े घरों की लड़की आई थी यज्ञ में, तो बड़ों के घर में खाना कैसा पकता है, चार आठ का खाना कैसे बनता होगा, थोड़ा सा अच्छा स्वादी देसी घी भी पड़ा, मिर्च मसाला भी पड़ा। अभी हम महायज्ञ में आ गए, इतना बड़ा देगरा बना, 300-400 का खाना, तो खाने में इतना तो स्वाद नहीं हो सकता है ना जितना थोड़े खाने में होता है। तो जब हम आएंगे ना तो हम आपस में देखेंगे आज क्या बना है, कद्दू आया, कद्दू, हम ऐसे गए कद्दू आ गया, फिर ये पालक आ गई, पालक तो मैंने पहले कभी खाई नहीं है, घर में तो मैंने खाई नहीं, आज यज्ञ में ये कद्दू आ गया, आज पालक आ गई, फिर वही चने की दाल आ गई, खाना नहीं पड़ा, तो थोड़ा थोड़ा बोलते थे। तो मम्मा जब रात्रि को कचहरी कराती थी कि आज सारे दिन में मन वचन कर्म से जिसने जो जो भूल किया वो हाथ उठाए, तो हमने बोल तो दिया देखो सबको लगती है बातें, तो हमने बोल तो दिया लेकिन हमको याद ही नहीं था कि मैंने कुछ बोला। तो हमारी एक सखी हाथ उठाती है कि मैंने कुछ सुना है, किसी ने कुछ बोला है, वो मैं सुना सकती हूँ। तो मैं शिकल देखती हूँ उसकी, पता नहीं मेरी बात तो नहीं सुनेगी हमको लगता है ये मेरी बात सुनेगी। फिर वो मेरे को भी देखती है, मुझे वाइब्रेशन आता है। फिर कहती है मम्मा यज्ञ का भोजन, महायज्ञ ऋषि बाबा का यज्ञ, उस यज्ञ के भोजन की ना आज इन दो बहनों ने ना थोड़ी गिलानी की, कहा ये कद्दू है, ये कद्दू तो मैं कभी खाती नहीं हूँ, कभी यो कर लो के घर में तो मैंने कद्दू खाया ही नहीं, और यहाँ रोज पेठा रोज कद्दू, रोज पेठा रोज कद्दू। तो मम्मा ऐसे थोड़ी गिलानी की, मम्मा ने देखा, मम्मा ने पूछा तुमने ऐसे बोला, मैंने कहा मम्मा जो सच्ची बात है वो मैं बताती हूँ, मैंने ये कद्दू पहले कभी घर में खाया ही नहीं था तो मम्मा कहती है तुमने घर में पहले ज्ञान सुना था, पहले तुमने देवता बनने का लक्ष्य रखा था, मैंने कहा नहीं, अभी तुम मानुष से देवता बन रही हो, और भगवान के यज्ञ का खाना, यज्ञ का खाना, यज्ञ का खाना समझ के खाओ, प्रेम से खाओ, ये यज्ञ का भोजन है, शिव बाबा के रचे हुए यज्ञ का भोजन, माना ये महाप्रसाद हो गया। महाप्रसाद की गिलानी करना और महाप्रसाद फेंक देना, तो हम क्या करते थे, थोड़ी सब्जी खाई नहीं अच्छी लगी तो उठा करके फिर बैठ जाके कटोरे का कटोरा फेंक देते थे। अरे वो भी कचहरी में बात आ जाती थी कि आज इसने सब्जी फेंकी, आज इसने चावल फेंका, आज इसने बूंदी फेंकी, आज ये, अरे ये भी कचहरी। फिर मम्मा बुलाती, मम्मा कहती आज तुमने सारे दिन में कोई भूल की है, तो हम कहते नहीं ऐसी तो मैंने कोई भूल नहीं की है मम्मा। मम्मा कहती ऐसी नहीं परंतु थोड़ी थोड़ी ऐसा, मम्मा मुझे याद नहीं आता है, नहीं याद करो, याद करो अच्छी तरह से याद करो। फिर याद करते करते और तो कुछ नहीं मैंने किया, ये जो खाना था ना मम्मा सब्जी उसने बहुत दी, थोड़ी खाई थोड़ी फेंक दी। तो मम्मा ने कहा यज्ञ का प्रसाद इतना लेना चाहिए जितना तुम खाओ, इतना लेकर के फिर खाया और फेंका और फिर गिलाने की, ये महापाप। फिर मम्मा रियलाइज कराती थी, फिर हमको बुद्धि में आया ये पाप, ऐसा बोलना भी पाप, फेंकना भी, जितना चाहिए उतना लो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा दृष्टांत मामा ने बताया बाबा ने, कि देखो जैसे हीरा है, हीरे की कितनी वैल्यू होती है, हीरे को ताज में लगाओ, गले में डालो, रिंग में डालो, कंगन डालो, हीरा सब में अपनी चमक दिखाता रहेगा। हीरे की कितनी वैल्यू है, पहनो तो उसकी चमक और उसकी सुंदरता है हमारे लिए, और बेचो तो उसका दाम है, बहुत बड़ा दाम है। अगर उसी हीरे को तुम वैसे पेट में डाल दो तो वो हीरा क्या अंदर काम करेगा, हीरा कोई शोभा देगा क्या अंदर, हीरा हमारे पेट को आंतरियों को चीर डालेगा। तो ऐसे यज्ञ का करना जाना, उसको विष करना, मना हीरे को तुमने गंवा दिया। और अगर जास्ती जास्ती खाया तो क्या होता था, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो आज समझो मालपुरा बना, आज मीठे चावल बने, तो हमको पता लग जाता था आज मीठा चावल बना है, तो हम जल्दी जल्दी तैयार होकर के जाएंगे मीठा चावल और अधिक खा लेंगे, एक बार खाया दूसरा बार भी खाएंगे, तो चावल खूट जाते थे। तो ये बात मम्मा के पास गई कि मम्मा चावल तो बहुत बने पर आज बच्चों ने डबल खा लिए। तो मम्मा पूछती थी डबल खाया, तो हम कहते मम्मा चावल बहुत अच्छे थे, अच्छे लगे तो हमने खा लिया। अच्छा तुमने खाया पर तुम्हारे दूसरे भाई बहनों ने तो खाया ही नहीं। तो खाना एक रस होना चाहिए, जो मिले जैसा मिले, माना एक बार मीठा चावल मिला बस उतना ही खाना चाहिए, और रोटी वो भी कभी चार खाएंगे कभी एक खाएंगे वो भी नहीं, एक रस भोजन रखो। एक रोटी तो एक चपाटी, दो चपाटी तो दो चपाटी, डेली भोजन का अंदाज एक जैसा खाओ, और मीठी चीज बनी तो जास्ती खा ली। तो मामा कहती थी ऐसे हीरे को पेट में डालो तो नुकसान होगा ना। तो यज्ञ का आसक्तिवश, इच्छावश, लोभवश अगर वो कणा दाना पेट में डाला तो वो आपके पेट में नुकसान करता, आपके आत्मा के लिए नुकसानकारक हुआ, क्योंकि लोभ का संस्कार पक्का हो गया। टोली मिलती है ना तो कईयों की दिल होती है चार चार टोली खाए, चार चार वाली खाए, तो न ये मनुष्य पना है न देवता ही पना है। जो मिले उनमें से दो का हिस्सा है मेरे नाम पर, मैं दो खाऊं या एक खाऊं, दो तो खा सकती हूं, मेरे लिए मिला ऐसा, परंतु हिस्सा ही एक है तो एक खाओ, दूसरा नहीं खाओ, दूसरा मांगूंगी, मैंने भी मांगा इसने भी मांगा, तो सारे यज्ञ ने दो 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 खा लिया तो तू दूसरों के लिए रह जाएगा। ये मामा मैनर से सिखाती थी, बहुत अच्छी धारणा सिखाती थी। हमारे कपड़े पुराने हो जाते थे तो हम फेंक देती थी, हमने पहले कभी ऐसा पुराना पहना नहीं, फेंक देती थी। मम्मा सिखाती थी और खुद पहनती थी, सिलाई सुई धागा उठा के जो पुराना होता था ना या फटा हुआ उसको सिलाई करके पहनो, फटा हुआ नहीं पहनो, फटा हुआ पहनना मना फकीर, फकीर जा रहे हैं जैसे फटा टूटा नहीं, रॉयल्टी से उसको ठीक ठाक करके सिलाई करके फिर तुम पहनो, और उसको वेस्ट नहीं कर दो। उसमें ऐसे नहीं कि सब्जियां बचा करके कुछ 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 काटो, कुछ छोड़ो, कुछ काटो, नहीं, सब कंप्लीट। फिर जहां बैठते हो उनकी पूरी सफाई करके उठो, नीट क्लीन। समझो हम यहां बैठे टोली बोली खाई, हम टोली खा के भाग जाएंगे, पर नहीं, जिस स्थान पर हम सबने मिलकर के टोली खाई उस स्थान को साफ करके नीट क्लीन करके उन बर्तनों को साफ करके उठना चाहिए। ये सब बातें मम्मा सिखाती थी, रोज मेहनत करती थी। रात्रि को कैसे सोना चाहिए, तो जब कभी थके हुए होते थे ना घर का काम काज करके बहुत थक जाते थे तो हम सो जाते थे, तो मम्मा आती थी चक्कर लगाने बाबा के डायरेक्शन से, मम्मा बच्चों की नींद को देखो, बच्चे सत्वगुणी नींद सोते हैं या तमोगुणी सोते हैं, तमोगुणी नींद उनकी होंगी जो रात्रि के समय देरी से खाएंगे और बहुत सारा खाएंगे, तो बहुत खाने से नींद गहरी होगी, पता भी नहीं लगेगा, उसको उठा करके यहां फेंक दो तो उसको पता भी नहीं लगेगा और वो खोंगरा मारता रहेगा हा कर देना। तो नींद बच्चों की हल्की होनी चाहिए, जैसे कि सोए हुए नहीं है, जैसे जागृत अवस्था में नींद है पर इतनी हल्की कि कोई आपके यहां पांव रखे तो आपको फट पता लग जाए। तो हमने खुद देखा बाबा की नींद, मामा की नींद इतनी हल्की, इतनी हल्की कि हम कभी किसी कारणवश मामा के कमरे में जाएंगे ना तो कमरे में जाते ही मामा फौरन ऐसे करके देखेंगे, कहेंगे आओ कौन है, कुछ काम है, कुछ कहना है, तो हम कहेंगे नहीं मामा फलानी बात थी इसलिए हम आए। अच्छा अच्छा आओ सुना क्या बात हुई। कभी किसी बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है, अब हम किसको सुनाए, नर्स को सुनाया पर नर्स से भी ये तबीयत और खराब है उसकी, फिर हम मम्मा को सुनाते थे, मम्मा आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, मम्मा वो बहुत बेचैन हो रही है, फिर मम्मा उठ करके आएंगे आके देखेंगे। ऐसे बाबा के कमरे में भी जाते थे ना, जब कभी भी गए पांव रखा और फरिश्तों के माफिक बाबा सोया हुआ है, जागृत अवस्था अंदर की, फौरन कहेंगे बच्ची आओ कुछ कहना है, बोलना है बाबा को कुछ, ऐसे पूछेगा। तो हमको लगता था सचमुच बाबा मम्मा की नींद नींद नहीं है, तो बाबा चाहता था कि मेरे बच्चों की नींद ऐसी होनी चाहिए, तो रोज मम्मा को कहता सब कमरे में तुम चक्कर लगाओ, मम्मा योग लगा के कौन कौन सोता है, 15 मिनट योग लगा के ऑलमाइटी बाबा से गुड नाइट करके फिर तुम सो जाओ, गुड नाइट फिर तुम सो जाओ, अगर गुड नाइट करके नहीं सोते ऐसे ही सो जाते हैं तो जैसे साधारण मनुष्य खाया पिया और सोया, खाने में भी कमाई नहीं तो सोने में भी कमाई नहीं, क्या कमाई रही उनकी। तो बाबा ने सोना कैसा होना चाहिए वो भी सिखलाया, धारणा कैसी होनी चाहिए भी सिखाया, बच्चों का चलना कैसा होना चाहिए चलना। तो आपको पता है कि कई आएंगे ना उधर से एकदम ऐसे ठप 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 धरती ही लेगी, और सब योग में बैठे हुए भी देखेंगे ये कौन आ गया योग में बैठे हुए भी देखेंगे ये कौन आ गया, सबका ध्यान खिंचाता है, अरे तुम फरिश्ता बन रहे हो देवता बन रहे हो तो तुम्हारा कैसा होना चाहिए चलना। तो ये भी दैवी मैनर्स नहीं, अच्छी बैठे जो पहले आता है वो पहले बैठे और किसी को हिलाओ नहीं, वो योग में बैठे हैं तुम दोनों के बीच में आके बैठते हो तो वो हिलेंगे ना दोनों, ये भी सूक्ष्म सूक्ष्म हमारे पाप बनते हैं। और चलना कैसे चाहिए फरिश्ता, धीरे धीरे, जरा भी हमारे पांव का आवाज धरती पर चलने का ना आवे। तो बाबा सिखलाते हैं फरिश्ते कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे बाबा चलता था, इतना धीमे चलता था जैसे पता भी न लगे कि बाबा कोई आया है, चप्पल पड़ा हुआ है बाबा को पर चप्पल का भी आवाज है। और बाबा की स्वच्छता इतनी थी, इतनी स्वच्छता जो बाबा ने सभी बच्चों को सिखलाई, रात्रि को पसीने वाला कपड़ा पहन के कोई भी नहीं सो सकता है, पसीने वाला कपड़ा सब उतार के नीट क्लीन होके हल्का ड्रेस पहन करके रात्रि को सोना, सफेद चादर जरा भी गंदी नहीं, मैलापन नहीं, आलस नहीं, सुस्ती नहीं, ये सब संस्कार बाबा ने चेंज किए। चक्कर लगाते थे, खुद देखते थे, खुद मम्मा सोती थी बाबा सोता था तो हम बाबा का देखते थे कमरा कैसा है, खटिया बाबा की कैसी है, एकदम ऐसे जैसे कि एकदम नीट क्लीन साफ सुथरा। आज भी बाबा का रूम जाके देखो, अभी बहुत बच्चे आते ना बाबा के रूम में, कोई कैसा तो इतनी सफाई आने वाले नहीं करते हैं, सबको सफाई रखनी चाहिए। तो बाबा ने खाना भी सिखलाया, खाना कैसे खाना चाहिए, धीरे धीरे शिव बाबा की याद में धीरे 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 मुख चलाओ, आवाज करके इधर उधर की बातें करके खाना नहीं खाओ, शांति में शिव बाबा की याद में खाना खाओ, शिव बाबा की याद में सो जाओ, और चलो तो ऐसे चलो जैसे फिस्ते चलते हैं, लिखो पढ़ो। और रूम के लिए एक डायरेक्शन देते थे कि रात्रि को जब सोते हो ना तो समझो 10:30 बजे रिकॉर्ड बजता है, 10:30 बजे रिकॉर्ड बजे इससे पहले अपने सब कुछ काम करके सुबह को उठने के लिए भी वस्त्र निकाल करके सब कुछ 10:30 बजे लाइट बंद हो और तुम सब अपने बेड पर बैठे रहो। ऐसे नहीं कोई सो रहा है बेचारा तो उसकी नींद फिटा के मैं फिर पढ़ाई कर रही हूं, वो सो रही है नींद का टाइम है और हम बैठ करके उस समय पढ़ाई पढ़ते हैं या हम किसी से बातें करते हैं घंटों घंटों बातें करते हैं। ये सब हमारे मैनर्स नहीं है, मार्क्स कट होती थी, मम्मा पूछती थी किसने कमरे के अंदर बातचीत की, तो जो छोटी छोटी बातें ना होती हैं मैनर्स वो मम्मा सिखाती थी और ये रिपोर्ट हमारे बाबा के पास जाती थी, बाबा फिर हमको इन बातों पर जनरल में सिखा देते थे। बच्चे जब तुम फरिश्ता बनेंगे जब तुम देवता बनेंगे ये अभ्यास करो, देवताएं कैसे चलते हैं, फरिश्ते कैसे चलते हैं, फरिश्ता होकर के खाओ, फरिश्ते होकर के चलो, फरिश्ते होकर के यज्ञ की सेवा करो, तो फरिश्तेपन के संस्कार तुम्हारे अंदर भर जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि मम्मा बाबा ने पालना की हमारी और प्यार भी टू मच दिया, पर रूहानी प्यार सच्चा प्यार मात पिता बनकर के, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे मात पिता बनकर के कोई भी चीज बढ़ियाते बढ़िया होंगी ना, बाबा खुद अपने हाथों से सब बच्चों को 350-400 बच्चों को खिलाए। आप देख रहे हो कि 1000 भाई बहन इकट्ठे हो गए, अभी वो टाइम था 300, यहाँ हजारों भाई बहन, तो भी दादियां बैठ करके सबको दृष्टि देके टोली देती है। ये संस्कार बाबा का डाला हुआ है, टोली दियो दृष्टि दे करके फिर टोली दो, ऐसे नहीं कि टोली देवे तो तुम इधर से भागो वो उधर से भागे वो उधर से, अरे बंदर सेना है क्या? बंदर ऐसे करते हैं, तुम तो देवताएं हो, फरिश्ते हो, लाइन में आओ, दृष्टि लियो और टोली। इस प्रकार की ट्रेनिंग खाने की, पीने की, टोली लेने की, तो जो भी बड़े बड़े दिन होते थे ना, बाबा कहते हैं मम्मा आज बच्चों को अव्यक्ति रास करने का प्रोग्राम दे दो। तो रास तो बहुत करते हैं, डांस तो बहुत करते हैं, परंतु आपने देखा होगा कई हमारी विदेशी बहनें फिस्ता डांस करती है, ऐसी डांस करती है जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, एकदम अव्यक्त होकर धीरे धीरे हाथ जलाती है, ऐसे करती है ऐसे। ये अव्यक्ति रास भी यज्ञ में हम करते थे। बाबा कहते सिर्फ सोल कॉन्शियस होके अपने को फिस्ता समझ के फिर रास करो, देह भान वाले नहीं। देह भान की ड्रेस पहन करके रास करेंगे तो देह अपमान आ जाएगा, पर अपने को फिस्ता समझ के फिस्ता की दुनिया में जाके फिस्ता बन करके डांस करो। तो बाबा ने डांस करना भी सिखलाया। और भी कई बातें जो लौकिक में समझो हमारे पेरेंट्स थे, तो हम तो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके आए इधर, उस समय हमारे ऊपर विघ्न थे, अत्याचार थे, वो रोकते थे, बंधन में डालते थे। तो फिर बाबा क्या करते थे, बच्ची तुम तो कल्याणकारी हो ना, तुमको सबका कल्याण करना है, इसलिए तुम उनको हर 3 मास के बाद बाबा एक जनरल पत्र लिख देते थे, मैटर, वो पत्र लिख करके हमको देते थे। तो हम अपने अपने फार्म में अपने माँ को, बाप को, भाई को, कोई भाई को भेजेगा, कोई माँ को, जो जिसका जिम्मेवार होता था उनके पास वो पत्र भेज देते थे। हर 3 मास में हम लौकिक की सेवा करते थे तो हमारे लौकिक संबंधी नष्टिक आ गए, जो उनके अंदर हमारे लिए नफरत थी ना कि हाय हमारे बच्चों ने क्या कर दिया, हमको छोड़ दिया, हम तो तरफ रहे हैं। उनकी तरफन को मिटाने के लिए हमारा ज्ञान युक्त पत्र जाता था, तो उनकी अंदर अंदर अवस्था अच्छी हो जाती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। पत्र को बार बार पढ़ते थे, पत्र को नैनों पर रखते थे, छिपा छिपा के रखते थे। जब उनका मन उदास होता था तो वो पत्र उठा के पढ़ लेते थे, फिर वो पत्र का जवाब देते थे, आपका पत्र आया, ऐसा हमारा कलेजा शांत हो गया, शीतल हो गया, ऐसा तुम ज्ञान युक्त पत्र हमको जरूर डालते रहे, हमको भुला न देना, हमको मृत्यु लोक में छोड़ नहीं देना, हमको अपने साथ अमर लोक में ले जाना। तो ये बाबा ने युक्ति सिखलाई कि उनका भी कल्याण तुम कैसे करो, लौकिक संबंधों का कल्याण कैसे करो। तो पत्रों के द्वारा बाबा ने बहुत हमारे जो पेरेंट्स थे ना उनके सबके माइंड को चेंज करा दिया। तो कराची में हमारे संबंधी फिर हमारे पास आते थे, हमारी दिनचर्या को देखने आते थे, 6-6 दिन 7-7 दिन रहते थे, कैसे बच्चियां उठती हैं, कैसे भोजन पान करती हैं और कैसे याद करती हैं, कैसे ज्ञान स्नान करती हैं, सारी दिनचर्या से बहुत प्रभावित हो गई। जैसे आज भी देख रहे हैं ना, जो आते हैं बाबा के इतने बड़े घर में इतने फरिश्तों को देखते हैं, कितने खुश होकर जाते हैं, ऐसे वहां भी ऐसा ही था। तो ये तो मैंने सारा समाचार आपको सुनाया कि बाबा ने हमारी पालना कैसे की, प्यार देते थे, गले लगाते थे, टोली खिलाते थे, दिल का हाल सुनते थे। तो एक दिन मुकर्रर होता था कि जिसको कुछ सुनाना हो ना, मन भारी हो, मन में युद्ध चलती हो, तो वो लीक करके फलाने बॉक्स में डाल दे, तो हम बॉक्स में डाल देते थे, माइंड को फ्री कर देते, मामा मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। फिर मामा बुलाती थी, मामा बुला करके सबको टर्न बाय टर्न बुला के मन को हल्का कर देते, तो मानो हम रोज की रोज साफ हो जाते थे। कचहरी में भी हाथ उठाने की दरकार न पड़े क्योंकि मामा को पहले ही बता दिया तो बात ही खत्म हो गई। इस प्रकार से हमारी बाबा ने पालना की, मामा ने पालना की। अभी मैं आपको कुछ बाबा की विशेषताएं बताती हूँ, वैसे तो आप सब जानते हो, लेकिन हाँ 7:30 बजे तो मैं बाबा की विशेषता आपको सुनाती हूँ 3-3 शब्दों में, वो भी बहुत थोड़ी मुख्य मुख्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाबा निश्चय बुद्धि, फिर उतना ही प्रीत बुद्धि। निश्चय बाप में हुआ तो निश्चय के साथ प्रीत बुद्धि ये सबूत मिला। बाबा की सारी प्रीत एक के साथ थी, एक के मत पर चलना और उसी में इतना निश्चय, कभी संशय आया ही नहीं अपने बात में। और निश्चय बुद्धि और प्रीत बुद्धि और तीसरा सरेंडर बुद्धि, कंप्लीट सरेंडर। जो शिव बाबा का डायरेक्शन मिला वो प्रैक्टिकल अमल मिलाया, बस ऑलमाइटी का इशारा मिला कि तुमको यज्ञ में अपना तन मन धन स्वाहा करना है, तुमको विश्व सेवा में ये धन लगाना है। फटाफट कलकत्ते में गई, अपने धंधे को समाप्त किया और समाप्त करके और उसने ये सब काम किया। और फिर बाबा को डायरेक्शन है कि भाई बच्चों को योग सिखलाना है, तपस्या करानी है, तो बस बाबा उस धुन में लग गए, खुद भी करते थे दूसरों को भी कराते थे। ऐसे नहीं ऑर्डर करते थे जाओ जाकर के ये तपस्या करो और बाबा खुद सोया रहे, नहीं, तपस्या तो तपस्या में साथ, कर्मणा सेवा तो कर्मणा सेवा में साथ, सब में बाबा ने साथ दिया। तो पहला शब्द बताया निश्चय बुद्धि, फिर प्रीत बुद्धि, फिर सरेंडर बुद्धि, फिर उसके बाद आओ त्याग। त्याग बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और सेवा तीनों इक्वल, ऐसे नहीं कि त्याग बड़ा नहीं, त्याग फिर तपस्या भी सहज तपस्या और फिर सेवा, माना बेहद की सेवा, परिवार की सेवा नहीं, एक छोटे शहर की सेवा नहीं, एक समाज की सेवा नहीं, पर सारे विश्व की सेवा शुरू से ही लेके, क्योंकि बाबा को अपने पाठ में निश्चय हुआ मैं विश्व पिता हूं, मैं प्रजा पिता ब्रह्मा हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों का कल्याण मुझे ही करना। फिर तीसरे तीन शब्द और, मन वचन कर्म में समानता थी, मनसा सेवा में भी, वचन की सेवा में भी। हर रोज बाबा दिन में दो तीन बार मूली चलाते थे, बगीचे में मूली चलाते हैं, आज भंडारे में गए भंडारे में बाबा मूली चला रहे हैं, आज अनाज साफ हो रहा है वहां मूली चला रहा है, जहां भी बाबा जाएगा ज्ञान सागर उछलता ही रहता था। तो मनसा वाचा करना तीनों प्रकार की सेवाओं में समान थे। फिर महादानी और क्या बोलेंगे, वरदानी और क्या बोलेंगे, और इससे बड़ा शब्द है महादानी, फिर वरदानी स्टेज, ऐसी स्टेज वरदानी जो बाबा का एक एक शब्द जो कहे वो तुम्हारे लिए वरदान हो जाए। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज बाबा की, विश्व कल्याण, सारे विश्व का कल्याण, सारे विश्व का भला हो। तो ये भी बाबा की तीनों स्टेज प्रैक्टिकल में देखी। फिर निराकारी, निर्विकारी और पाठ पक्का है ना, हाँ, ये बाबा के तीन शब्द हैं जो अंत समय अंत महावाक्यों में सारे ज्ञान का सार देखे गए। बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होकर के रहना है, किसी चीज का भी बच्चों को अभिमान न हो। दूसरा, बाप में भी निश्चय, अपने आप में भी निश्चय, ये नहीं कि बाबा अपने में निराश हो गया, पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा नारायण, ऐसा तो नहीं कि मैं नारायण नहीं बनूंगा, नहीं, अपने पाठ में भी निश्चय और बाबा में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, कैसी भी सीन तुम्हारे सामने आए ऐसे समझो ये कल्याणकारी सीन है, आज नहीं तो कल आपको कल्याण दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मम्मा अव्यक्त हो गई, अब जब अव्यक्त हो गई तो बाबा हमारे सामने है सुप्रीम टीचर, उसने हमको नष्ट हुआ बनना सिखाया, तो दूसरों की मां मर जाती थी तो हम ड्रामा का ज्ञान सुनाते थे उसको, अरे सो क्या, आत्मा ने एक चोला छोड़ा दूसरा पहना, तो इसमें रोने की क्या दरकार है, तुम क्यों रोती हो, तो दूसरों की मां मरती थी तो हम ज्ञान सुनाते हैं, और जब हमारी मामा चली गई तो हमको आंसू आने लगे। तो बाबा ने सिखाया, बाबा ने कहा बच्ची तुम लोग क्या बोलती हो, कि शिव बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा का जो ये संगम समय है वो कल्याणकारी है। तो जो कुछ संगम युग में हो रहा है वो है ही कल्याणकारी, इसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता है। तो उस समय हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम कहते मम्मा चली गई, फिर हमारी पालना कौन करेगा, फिर कौन मीठी बच्ची कह के बुलाएगा, ऐसी तो कोई यज्ञ में है नहीं जो मम्मा माफिक पालना करे ऐसे। अब बाबा ने मम्मा के जाने के बाद सारी ड्रामा की सीन हमको दिखा दी, कितने बच्चे बढ़ गए, कितने बच्चों की सेवा हो रही है, कितनों का कल्याण हो रहा है। तो बाबा कहते कराने वाला मैं हूं ना, यज्ञ मैंने रचा, कोई मम्मा ने थोड़ी रचा, मम्मा को भी मैंने रचा, बाबा को भी मैंने रचा, ड्रामा को भी मैंने रचा, ड्रामा का ज्ञान मैंने दिया। तो जब मैं हूं, तुम्हारा मात पिता में बैठा हुआ हूं, तो तुम बच्चे कहते ये क्या हुआ, ये क्यों होगा, अब यज्ञ कैसे चलेगा, ये सब तुम्हारे संशय। तो इसमें बाबा हमको सिखाते थे ड्रामा की हर सीन को साक्षी होके देखो, साक्षी होके देखो और कल्याणकारी समझ करके और कदम को आगे बढ़ाते रहो, बीती बातों का चिंतन नहीं, विघ्न विनाशक स्थिति। तो इसके साथ तीन शब्द मैं और भी आपको बताती हूं। बाबा सर्व के प्रति स्नेही थे, सर्व के प्रति और सहयोगी थे और सर्व के प्रति शुभ चिंतक थे। गाली देने वाले को भी गले लगाना है, अपकारियों का भी उपकार करना है। चलो अभी।